नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ ओस्लो सिटी हॉल में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा तथा डिजिटलीकरण प्रमुख क्षेत्र है। अक्टूबर 2025 से व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता TEPA लागू होने के बाद यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास करेगा। इस समूह के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में 19 अरब डॉलर का है। यह शिखर सम्मेलन क्षेत्र के साथ भारत के बहुआयामी सहयोग को विस्तार देने में सहायक होगा। साथ ही ये आपसी हितों में जुड़े वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श का अवसर भी प्रदान करेगा। शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक रिटायर्ड ने आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि MSME अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। आज नई दिल्ली में भारत में MSME सशक्तिकरण हेतु राज्य और केंद्र सरकारों के साथ रणनीतिक साझेदारी का नेतृत्व करने वाली ईशान इंटरनेशनल के प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सांतनु श्रीवास्तव के साथ बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, जनजातीय हस्तशिल्प, जैविक खेती की संभावनाओं, वन उत्पादों, पर्यटन अवसरों और विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत के कारण उद्यमिता और स्थानीय उद्योग विकास के लिए अपार संभावनाएं रखता है। उन्होंने कहा कि MSME युवाओं, महिलाओं, कारीगरों, किसानों एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए सतत आजीविका के अवसर पैदा कर सकते हैं। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया है कि बेहतर आधारभूत संरचना, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, बाजार संपर्क और डिजिटल पहुंच के माध्यम से MSME समावेशी विकास को गति देने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं तथा आत्मनिर्भर अरुणाचल के और विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान दे सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार सेन ने आज ईटानगर स्थित निर्वाचन भवन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तरीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी लीकेन कोयू तथा उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी शानिया कायमुजे भी उपस्थित रहे। ये बैठक 16 सितंबर 2025 को आयोजित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की तैयारियों की संबंधी पिछले बैठक के क्रम में आयोजित की गई तथा ये हाल ही में घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण के चरण 3 की गतिविधियों का हिस्सा रही। शिक्षा राज्य मंत्री PD सोना ने आज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की 9वीं परिषद बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यभर में उच्च शिक्षा सुधारों और चल रहे आधारभूत संरचना विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बैठक की जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा है कि बैठक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA 1.0, RUSA 2.0 तथा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM ओषा के तहत हुई प्रगति का आकलन किया गया, जिसमें अधिकांश परियोजनाएं पूरी हो चुकी है या पूर्णता के करीब है। उन्होंने कहा कि बैठक में संस्थागत विकास योजनाओं को अद्यतन करने, सभी संस्थानों के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप संस्थानुसार रोडमैप तैयार करने जैसी प्रमुख प्राथमिकताओं को दोहराया गया है। श्री सोना ने कहा है कि परिषद ने NASC मान्यता कौशल आधारित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रम पुनर्गठन तथा नवाचार एवं अनुसंधान संस्कृति को मजबूती प्रदान करने पर भी जोर दिया है। तवांग जिला प्रशासन ने आज लोंगा सर्कल के अंतर्गत साजो स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में सेवा आपके द्वार 2.0 कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। इस शिविर में सोजा, पोइतो, दुगुम्बा, कुंभा और आसपास के गांवों के निवासियों को लाभ मिला है। शिविर में कुल 20 सरकारी विभागों ने भाग लिया और विभिन्न आवश्यक जनसेवाएं तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रमुख सेवाओं में आधार नामांकन, जनसुनवाई, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, पशु चिकित्सा सेवाएं, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY और ई श्रम के अंतर्गत पंजीकरण आदि शामिल रहे। और प्रोजेक्ट पुरिसा के तहत इनको फाउंडेशन द्वारा आज जीरो के लिम्पिया स्थित अपने कार्यालय सह पुस्तकालय में कहानी वाचन सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक तागे आन्या ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ये कहानी वाचन सत्र स्कूली बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, क्योंकि आजकल कई बच्चे इंटरनेट और मोबाइल फोन पर अधिक निर्भर होते हैं, जो धीरे धीरे पुस्तकों के अध्ययन से दूर कर रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।